مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور انجینئر جو گل۔ سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل کا آغاز ہم کراچی میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے سے کریں گے جس میں شیعہ اسماعیلی کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملہ ایک بس پر ہوا جس میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین اور مرد شامل تھے۔ اب تک 45 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں اور درجن سے زیادہ افراد کہا جا رہا ہے کہ اس وقت زخمی ہیں اور کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ پرنس کریم آغا خان نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت کراچی میں موجود ہیں اور انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کی انہوں نے سربراہی بھی کی ہے۔ کل انہوں نے ملک بھر میں سوگ کا اعلان بھی کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ اور امریکہ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور پاکستان میں امریکی سفیر ریچرڈ آلسن نے اس حملے کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش بھی کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایک اور دہشت گردی سے متعلق ہی ایک اور موضوع پر بھی بات کریں گے۔ جو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے پی ٹی آئی، انہوں نے کچھ دہشت گردی کے خلاف کچھ نئے انیشیٹو لیے ہیں جس پہ کہ بعض حلقوں کی طرف سے اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے ان اقدامات کی، جبکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس پہ سوالیہ نشان بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور سامعین، ہمارے یہ پروگرام جہاں نما نہیں ہے، راؤنڈ ٹیبل ہے۔ اس میں آپ کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89، نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ ہمارے اس مجلس مذاکرہ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام کے شرکا میں شامل ہیں تاج حیدر صاحب، کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے، پی 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 سے ان کا تعلق ہے۔ داؤد آغا صاحب شیعہ کانفرنس کے آپ صدر ہیں، پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ ویل نون ڈیفینس اینالسٹ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں۔ یہاں یو ایس سے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق صدر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب بھی پروگرام میں شریک ہوں گے۔ اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی، السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی بریگیڈیئر صاحب، کراچی میں آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 45 جانیں جو ہیں ضائع ہوئی ہیں، ابھی تحقیقات تو ابھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ حملہ آور جو ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کسی دہشت گرد گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟
نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے، اور میرے خیال میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک دن میں کنکلوژن پہ جمپ کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، مگر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف آپ نے قبائلی علاقوں میں آپریشن کیا اور جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہے وہاں سے ان کو نکال دیا، اور وہ تقریباً سارے جو ہے افغانستان میں ہیں، وہاں سے کبھی نہ کبھی کاروائی کرتے ہیں، لیکن کراچی بہت ایک شہر ہے اور وہاں پر یہ ایک موقع ہے کہ اس کی اگر صحیح تحقیقات ہوں پتہ چلا جائے کہ اس طرح کی کاروائی کس نے کی ہے، اور اگر واقعی اس کا تعلق اس طرح دہشت گرد گروپوں کے ساتھ ہے تو ان کا تعلق لوکل گروپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور میں خیال میں یہ بڑی مفید ہو سکتی ہیں تحقیقات اگر ان کو پروفیشنلی کیا جائے تو.
جی ہمارے ساتھ رہیے, تاج حیدر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم تاج حیدر صاحب.
السلام علیکم.
جی آپ کا ہم انتظار کر رہے تھے تاج حیدر صاحب, اور آپ سے ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے, کوئی بات نہیں, کہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جو سانحہ پیش آیا ہے کراچی میں, اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 18 مشتبہ افراد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. کچھ ابھی تک معلومات سامنے آئی ہیں کہ ان افراد کا تعلق کس دہشت گرد گروپ سے ہے؟
دیکھیے جو ابھی تو جب تک کہ کوئی بات مکمل نہ ہو جائے تو وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور خاص طور سے اسماعیلی کمیونٹی کے خلاف یہ ہوئی ہے, تو اس کا ایک پس منظر ہے, بہت بڑا پس منظر ہے کہ افغانستان کے اندر جس طریقے سے طالبان حکومت کے دوران جبر و ظلم کیا جا رہا تھا اور کوئی 500,000 اسماعیلی نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے تھے افغانستان سے, اور ان میں سے بیشتر جو تھے وہ کراچی سے ہو کے گزرے تھے, اور وہ کمیونٹی اتنی منظم ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر خاندان جو تھا وہ کسی نہ کسی خاندان کو مہمان رکھے ہوئے تھا, جب تک کہ وہ مغربی ممالک میں ان کے امیگریشن نہیں ہو جاتا تھا, اور ان میں سے بہت سے یہاں ٹھہرے بھی ہیں. تو یہ ایک بڑی امن پسند اور منظم جماعت ہے, جو آپ یہ سمجھیے کہ 500,000 مہاجرین آئے لیکن حکومت سندھ کو یا مرکزی حکومت کو ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا, اور اس کمیونٹی نے خود اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا. لیکن جو مذہبی انتہا پسند ہیں طالبان ہیں, ان کا ایک تضاد ان سے بہت پرانا ہے, اور جس کی وجہ سے انہیں اپنا صدیوں پرانا وطن چھوڑنا پڑا ہے, اور یہ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں مائگریٹ کر رہے ہیں. اب یہ ایک جو کیا گیا ہے حملہ, تو ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسند ہیں کہ جنہوں نے ان پہ حملہ کیا.
ٹھیک, اوکے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے کراچی میں آپریشن جاری ہے تاج حیدر صاحب, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گزشتہ میں یہ بات کی تھی کہ کراچی کی جو روشنیاں ہیں بقول ان کے وہ واپس لوٹ رہی ہیں. آپ کی جو جماعت ہے پی پی پی, ان کے بھی مختلف رہنما جو ہیں کچھ اسی قسم کے دعوے کرتے رہے ہیں, اس کے باوجود ایسے واقعات کا رونما ہونا, کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے؟ حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟
بی دیکھیے, ایک چیز ہے کہ نظریاتی طور پہ آپ کہاں کھڑے ہیں, یہاں تک ہمارا اور مذہبی انتہا پسندی کا تعلق ہے, تو روز اول سے جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی تو یہ تمام مذہبی حلقے ہم پہ کفر کے قطرے لگا رہے تھے, اور ہمارے لوگ شہید ہوتے رہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی مذہبی انتہا پسندوں نے دی, پھر شہید بیوی ذوالفقار.
جی ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ فاٹا میں جو ہے وہاں پہ آپریشن جاری ہے دہشت گردوں کے خلاف, اور کافی جو لوگ ہیں دہشت گرد ہیں مختلف گروپ, ان کو یا تو ہلاک کیا جا چکا ہے یا باہر نکال کے افغانستان میں اس وقت وہ موجود ہیں آپ کے بقول, لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات کا رونما ہونا ایسا کیوں ہے؟
دراصل کراچی کا معاملہ جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دو تین خیالات ذہن میں آتے ہیں. ایک خیال تو یہ ہے کہ وہاں پر جو سیاسی پارٹیاں ہیں کی ملیٹنٹ گروپس ہیں, اور وہ آپس میں بھی اس طرح کے ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث رہی ہیں, اور جو وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے اس میں کافی کچھ پروگرس بھی ہے, اور ہم نے سوچا کہ شاید آرمی یا جو آئیس آئی ہے مسئلے کو سمجھ ہے. اس واقعے سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی وہ پورے جو پیراڈائم ہے کراچی کے لا اینڈ آرڈر کا, اس کو میرے خیال میں وہ نہیں سمجھ ابھی تک.
جی
کہ ایسا واقعہ ہونا, یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, چھوٹا نہیں ہے, اور اس کا امپیکٹ ہوگا کافی, اور میرے خیال میں آرمی چیف کا ایک دم جانا اور وہاں پر میرے خیال میں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جہاں تک ہے کہ جو پولیٹیکل ونگز ہے کے خلاف کچھ کاروائی شروع ہو چکی ہے, کچھ کے بارے میں شاید وہ سوچ رہے ہیں اور کافی ساری معلومات ان نے حاصل کی ہوئی ہیں. ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے کراچی میں کور کمانڈر رہے ہیں, کہ اپنی بھی نالج ہے اس کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود تھوڑا سا افسوس میں ہوتا ہے کہ ابھی اس واقعے سے تو ہم سمجھے کہ شاید پورا جو ہے ابھی تک وہ انڈر کنٹرول نہیں ہے, یعنی پورا انڈر طرح کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس وائز اس کو پورا کا احاطہ کرنا. اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز آتی ہے, کیا یہ سیاسی جماعت ہے اس کو ہاتھ ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے. اور میرے خیال میں انہوں نے ایک میجر سیاسی جماعت کراچی کی ایم کیو ایم کے اوپر ہاتھ ڈالا اور کچھ ٹارگیٹ کلر اور دوسرے لوگ پکڑے بھی تھے, اور اس بارے میں اور بھی خبریں آ رہی ہیں اور شاید کوئی پروگرس ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جیسے کسی نے کہا ہے کہ بہت اچھی جماعت ہے, لیکن اگر وہ اس قسم کے کام یہ ملیٹنٹ ونگ والا کام یہ چھوڑ دے, میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری اچھائی ہیں. اسی طریقے سے میرے خیال میں ان کی ڈر کی وجہ سے یا مقابلہ کرنے کی وجہ سے شاید پیپل پارٹی کا بھی ایک ملیٹنٹ ونگ ہے. اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اے این پی نے بھی تھوڑا بہت جو ان کا ووٹ بینک ہے اسے سیو کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ملیٹنٹ ونگ تھوڑا بہت بنایا ہوگا. تو جب ابھی حکومت نے ان کو ہاتھ ڈالا ہے کافی لوگ پریشان تھے, لیکن اس کے درمیان میں اس واقعے کا ہو جانا, اس کا لگتا یہ ہے کہ جیسے مذہبی عنصر اس میں لگتا ہے, کیونکہ یا جان بوجھ کے ایسا کیا گیا ہے تاکہ اس کو مذہب کا رخ دیا جا سکے. لیکن ان کو ٹیررزم کی سپلائی نہ تو افغانستان سے بند ہے, یعنی وہ جو لوگ ادھر تھے اور جا کے ادھر, اور بھی جو تھوڑے بہت پکڑے جاتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے تاریخ طالبان سے تھا پرانے, ابھی ان کا کنیکشن تو ٹوٹ گیا.
لیکن آج بریگیڈیئر صاحب, آج جو ہے اطلاعات کے مطابق کچھ پمفلٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں کراچی میں, جس میں داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس میں کہاں تک حقیقت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن پمفلٹس جو ہیں وہ باقاعدہ دکھائے جا رہے ہیں لوکل میڈیا پہ. اس کے علاوہ جو بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے رائٹرز, انہوں نے کہا ہے, اس ایجنسی کے مطابق دلہ جو گروپ ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو اس میں آپ کو کہاں تک حقیقت نظر آتی ہے؟ یہ دو گروپس جو ہیں یہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ داعش کی جب بات کی جاتی ہے تو یہاں سے ہی کچھ گروپس ہیں جو ٹی ٹی پی تھی, ایکچوئل وہ تو ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے, منتشر ہو گئی ہے, اور اس میں مختلف گروپ بنے ہیں, اور کوئی گروپ جو ہے اپنے آپ کو اور طاقتور ظاہر کرنے کے لیے داعش کا نام لیتے ہیں. میرے خیال میں کہ داعش والے جو ادھر سیریا میں ہیں اور عراق میں ہیں وہ ان کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں, لیکن انہوں نے بہر صورت ایک نام رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نام کی تبدیلی ہے,
جی بریگیڈیئر صاحب آپ وہی بتا رہے ہیں جو چودھری نثار جو ہیں وہ کہتے آ رہے ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے, وزیر داخلہ جو ہیں پاکستان کے وہ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ داعش سے کوئی امیڈیٹ خطرہ جو ہے پاکستان کو نہیں ہے. لیکن ہمیں یاد ہے 31 اکتوبر 2014 کو اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کی جو حکومت ہے انہوں نے کچھ وارننگ دی تھی کہ بلوچستان میں داعش کی موجودگی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد پھر میڈیا کچھ ایسی رپورٹس آ رہی تھی کہ داعش اور جندلہ جو ہیں ان کے مابین کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں بلوچستان کے اندر. تو اس وقت کچھ کہاں تک ان لوگوں کا ہاتھ ہے یہ بہت اٹس ٹو ارلی میرے خیال میں اس پہ بات کرنا. تاج حیدر صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی جانب ہم جاتے ہیں. تاج حیدر صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی میں اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, کیا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, حالات کیوں کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں؟
دیکھیے پہلے تو میں سختی سے اس بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے. میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں سندھ کا, اور اگر کسی شخص کا بھی نام سپریم کورٹ آف پاکستان کو پتا ہے या किसी भी इदारे को पता है, तो मेरा उससे कोई किसी किस्म का पता ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों के नाम लिए जाते थे वो हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों को कत्ल किया है, और अभी पिछले दिनों एक ग्रेनेड का हमला हमारे एक मिनिस्टर पे कराची में किया गया था। तो ये तो मैं इसको बिल्कुल सिरे से इसकी तरदीद करना चाहता हूँ। दूसरे ये कि ये जो मजहबी इंतहा पसंद हैं और ये तमाम ग्रुप हैं, ये अमरीकनों ने और हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने ये कायम किए थे, और ये वो बीज हैं कि जो बड़े प्यार से हमने बोए थे और आज उनके कांटे हमें लहूलहान कर रहे हैं, उन दरख्तों के कांटे। और यही नहीं, हमने पख्तूनख्वा के अंदर कार्रवाई की हमारी हुकूमत ने और हमने पूरे पख्तूनख्वा को खाली करा लिया। सिर्फ एक छोटा सा इलाका बचा था और उस पर पाकिस्तानी उस वक्त की जो आर्मी कमांड थी वो उनको पसोपेश था वहां पे जाने से। जो अंदर कैंप हैं जिसको कि सब पता है, जनूबी पंजाब के अंदर जो कैंप थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इंतखाबात के अंदर एक कोएलिशन बना जिसके अंदर पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, तालिबान, मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी और इमरान खान साहब की पार्टी, उन्होंने दूसरी सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी। अब ये एक हकीकत है जो सबको मालूम है, जो बार बार कही जा रही है। आज भी ये जमातें चंद के आपस में बरसरे पैकार हैं और एक दूसरे से लड़ रही हैं, और जब भी इस किस्म की कोएलिशंस बनती हैं उनका अंजाम यही होता है। लेकिन ये कि आज भी हम ये कहने को तैयार नहीं है कि 2013 के इंतखाबात में तालिबान का कोई रोल था।
ओके ताशेदर साहब, सही है, वो तो एक वो है, माजी है, पास्ट का वो हिस्सा है। आपने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने बनाया इन ग्रुप्स को, कुछ पीएमएल नून और पीटीआई और बाकी सियासी जमातें इनकी तालिबान की हामी जमातों के नाम से जानी जाती थी। लेकिन इस वक्त आप लोगों की हुकूमत है सूबा सिंध में, और ऐसे वाकया जब रूनुमा होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकताचीनी जो है वो सिंध हुकूमत पे की जाती है। तो ऐसे वाकयात को रोकने से मुतल्लिक आप लोगों ने क्या इकदामात उठाए हैं अभी तक?
वही कत्ल भी करते हैं, वही सवाब भी लेते हैं। मैं आपसे बिल्कुल अर्ज कर रहा हूँ ये बात कि इसकी जड़ें माजी में पेवस्ता हैं, और आज तक अगर जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर हमला होता है मजहबी इंतहा पसंदों का, मेरन नेवल बेस पे होता है और दूसरी जो फौजी तनसीबात है उन पर होता है, और पता ये चलता है कि अंदर लोग मौजूद हैं इन तमाम इदारों के जो रास्ता दे रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि अंदर लोग मौजूद हैं कि जिनको जिनकी पुष्टपनाई मौजूद है। और ये तहकीकात जो है आपको इसकी शायद आपको इतनी जरूरत नहीं है जितनी इन मालूमात की जरूरत है कि किसके क्या नजरियात हैं और कहाँ नजरियाती हम आंगी है। और मेरे ख्याल से हमारे रियासती इदारों को जो बहुत बड़े कार्रवाई कर रही हैं उनको थोड़ी सी नजर इस तरफ भी डालनी चाहिए कि उनकी अपनी सफों में ऐसे लोग क्या मौजूद हैं या नहीं हैं, या उनको हम हटा चुके हैं कि जो जिनके नजरियाती रास्ते और नजरियाती लिंक इन दहशतगर्द ग्रोहों के साथ हैं। क्योंकि जब तक के रियासती इदारे अपने पूरी तरीके से ये नहीं होंगे तब तक की मेरे ख्याल से इसमें दुश्वारियां पेश आएंगी।
बिल्कुल, इस पे हम उनसे कमेंट्स लेंगे, ब्रिगेडियर साहब से हम कमेंट्स लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल दोबारा ताजेदर साहब जहन में आता है कि शहरियों का जो तहफ्फुज है वो आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो आप लोग वही, मैं दोबारा वही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आप लोग क्या इकदाम उठा रहे हैं ताकि ऐसे वाकयात को रोका जा सके?
देखिए, जो इकदाम हैं, जो ऑपरेशन चल रहा है कराची में और सब मिलजुल के जो ऑपरेशन कर रहे हैं, पहली चीज तो ये थी कि हमने तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया, और 2010 में हमने कहा कि भाई इस किस्म के जितने भी एलिमेंट हैं तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा और कोई इनको हम सियासी कवर नहीं लेने देंगे, और इसमें बड़ी हद तक हमें कामयाबी हुई। उसके बाद जो इदारे मिल के काम कर रहे हैं वो ऑपरेशन एक चल रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये ताकत का मसला नहीं है, ये इंटेलिजेंस का मसला है। इनिशिएटिव दहशतगर्द के पास होता है, वो अपना टारगेट सेलेक्ट करता है, उसकी रेकी करता है, वक्त सेलेक्ट करता है और हमला करता है। हमें पता होना चाहिए कि ये क्या करना चाह रहे हैं और कहाँ मौजूद हैं, और हमें उस डिफेंसिव मोड से निकल के ऑफेंसिव मोड में आना होगा। और ये हम सिर्फ इंटेलिजेंस के इदारों की अच्छी कारकर्दगी से कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटेलिजेंस के इदारे इस तरीके से ताबून नहीं कर रहे और पेश नहीं बता रहे तो उसके अंदर फिर दुश्वारियां। और ये मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं बता रहे, बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे अनासिर अंदर मौजूद हैं कि जो अपनी हाई कमांड की बात नहीं मान रहे और गड़बड़ कर रहे, तो इस किस्म के वाकयात उस वक्त
बिल्कुल ये ब्रिगेडियर साहब से भी आपने अहम पॉइंट, ताज हैदर साहब काफी अहम पॉइंट आपने उठाए हैं, उस पे वो ब्रिगेडियर साहब से भी उस हवाले से हम क्वेश्चन करना चाहेंगे। लेकिन दाऊद आगा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम दाऊद आगा साहब। जी दाऊद आगा साहब, एक दफ़ा फिर शिया कम्युनिटी का जो एक सेक्ट है इस्माइली, उनको निशाना बनाया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और आपकी नज़र में वो क्या सोच है जो इस तरह के हमलों का सबब बन रहा है?
एक्चुअली बात ये है कि जो पाकिस्तान में जो अभी एक सिनेरियो चल रहा है ना जी, उस सिलसिले में जो माइनॉरिटीज है, मतलब यहाँ पे सिख है, हिंदू है, ईसाई है, उससे बढ़कर अगर हम बात की जाए कि यहाँ पर शिया कम्युनिटी भी आबाद है पूरे पाकिस्तान में, तो उस हवाले से हमारे क्वेटा में आपके लिए एक रोज रोशन की तरह आया है कि क्वेटा में भी इसी तरह का जो है बसों से लोगों को उतार के चुन चुन के मार दिया गया, इसी तरह आज जो कराची में वाकया पेश आया है ये उसी एक कड़ी है उस सिलसिले की, जो एक माइंड सेट है लोगों का कि जो लोग सोचते हैं कि हमने इस मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाई फैलाना है, तो मैं इसको उस सिलसिले में जोड़ना चाहूंगा कि मतलब इससे पहले क्वेटा में हुआ है, अभी आज कराची में हुआ है। आपको पता होगा कि इस्माइली फिरके का पिछले साल भी जो है कराची में इसी तरह एक हमला हुआ, इसके जमात खाने थे, और पिछले दिनों में महीना पहले जो है हमारे बोरा कम्युनिटी पर जो है वो भी कराची में उसके नमाज जुम्मा पे इसी तरह का सानिया पेश आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारे जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो अगर चाहे कि अगर इन सानिहात को रोके तो उसके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन आई होप कि हमारे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो इस मामले में आज तक संजीदगी से उन्होंने मुजाहरा ही नहीं किया ना, इसीलिए तो आज तक जितने भी जनाजे गिर रहे, लोग जनाजे उतार रहे, लाशें उतार रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ पे पिशावर पे जो है हमारे ईसाई जो बरादरी है उस पे जो हमला किया गया है, और साने गोजरा पे इसी तरह हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसी, हमारे खुफिया इदारे जो है वो आज तक पाकिस्तान में जो है इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, इसीलिए तो आज तक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में आए रोज सानियात रुनुमा होते, लेकिन आज तक एक भी कल्प्रिट जो है गिरफ्तार नहीं हुए, कोई कैसा ही किरदार तक नहीं पहुंचाया गया।
ठीक है, मेरा तो आपकी जो अभी आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा आगा साहब, जाहिर है ये पहला वाकया नहीं है कि शिया जो बरादरी है उनको निशाना बनाया गया है, पहले भी इस तरह होता रहा है। ये बताइएगा कि आप लोगों की मीटिंग्स भी हुकाम से होती रही हैं अपनी कम्युनिटी के तहफ़ के हवाले से, और फिर जो खबरें आती हैं आपको यकीन दहानियां भी दिलाई जाती है, क्या उस पर बाद में फिर अमल दरामद भी होता है?
मुझे नहीं समझ आ रही है, मतलब आज तक आपको याद होगा कि साने 10 जनवरी अलमदार रोड पे जो हमारे 100 जनाजे गिरे, उस पे हमने जो एक पुरामन एहतजाज किया, उसमें सिर्फ सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान का एक महीने के लिए उन्होंने उसको जो है खलदम करार दिया, लेकिन मैंने समझता कि आज तक पूरे पाकिस्तान में जो लोग अमन पसंद हो गए, मेरा कहने का मकसद ये कि जो माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, अगर उस दूसरे सेंस में कहा जाए कि एक सेक्ट है शिया, जो शिया लोग हैं, शिया मतलब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ये लोग अमन पसंद हो गए, लेकिन आज तक जितने भी मुजाकरात हुए हुकूमत पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ, मैं नहीं समझता कि जो हम समझते हैं कि एक लेवल होता है कि अगर किसी उस दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए अमली इकदाम करें, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, हमारे खुफिया इदारे आज तक सिंसेरिटी का कोई इन्होंने सबूत नहीं दिया। आप देखें कि कल क्वेटा में जो एक वाकया रोनुमा, उस सिलसिले में भी जो है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने और हमारे सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल जो है वो जिम्मेदारी का सबूत नहीं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जितने भी जो शिया बरादरी है उसके खिलाफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुआ, आज तक किसी ने उसको कोई सीरियस नहीं लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि ना वफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना हमारी सिक्योरिटी एजेंसी।
ठीक, ओके, बिल्कुल। ये यहाँ पे अहम सवाल बनता है कि आखिर स्टेट नैरेटिव जो है वो क्या है उन लोगों के खिलाफ जो इस वक्त अकलियतों को निशाना बना रहे हैं या अकीदों की बुनियाद पर उनको निशाना बना रहे हैं। ये ताज हैदर साहब से हम जानना चाहेंगे, लेकिन दाऊद आगा साहब आप कुछ देर के लिए हमारे साथ थे, बेहद शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, ये जो एक पॉइंट जो है वो उठाया है ताज हैदर साहब ने भी इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से, और दाऊद आगा साहब ने भी वही बात की है कि ये जो है इसको हम जो वाकियात बार बार रूनुमा हो रहे हैं दहशतगर्दी के, इसको ये इंटेलिजेंस शेयरिंग में की फेलियर है, उस वजह से ये कुछ हो रहा है। और साथ ये भी एक ताज हैदर साहब ने पॉइंट उठाया है कि ये भी मालूम करना जो है वो ज़रूरी है कि आया अब भी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सफ़ों में दहशतगर्दों के हामी मौजूद हैं या नहीं, और ये कि फौज जो है वो कब डिफेंसिव मोड से निकल कर ऑफेंसिव मोड में आएगी। ये क्वेश्चंस जो हमारे जी बाकी पार्टिसिपेंट्स ने उठाए हैं, प्लीज।
पहले तो मैं कहना चाहता हूँ ताज हैदर साहब के
जी
है, वाकई ये सही है कि ये जो पीपल पार्टी है और एनपीएम है या एएनपी, तो कराची की पार्टियां हैं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मौकफ दूसरी पार्टियों के जो कि एक चम्बट डालती हैं, वो बात अपनी जगह पे सही है। जहाँ तक है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर इंटेलिजेंस नजर नहीं आ रहा, सिक्योरिटी फोर्स के अंदर ये जो दो तीन हमले से हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस से हुए हैं, मेहरान और शायद
आपको
नहीं की मालूम है वो भी हुआ है वहाँ पर, सिर्फ एक या दो में ऐसे पता चला है कि अंदर से एक आदमी को आदमी मिले हुए थे। आपने देखा कि जब मॉरेटोरियम था पांची थाने पे, सबसे पहले वही लोग आदमी के ब्लैक वारंट साइन किए, मेरे ख्याल में पहले के हफ्ते में काफिलेट काल गए और वो इन्हीं सिक्योरिटी से उनका ताल्लुक, और अभी भी जो है नो टॉलरेंस या जीरो टॉलरेंस के लिए है। इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है वो वैक्यूम में काम नहीं कर सकते जब तक कि लोग उनके साथ ताउन ना करें। मिसाल के तौर पर ये जो इशू है टेररिज्म का, ये इतना ओवरवेलमिंग है कि इसके अंदर ये लोग आते हैं, एक जगह पे रहते हैं, किसी घर को किराए पे लेते हैं, किसी टारगेट की बाकायदा रिकॉन्सेंस करते हैं, फिर उसके बाद हमलावर होते हैं। जब तक हमारी आबादी में ऐसे लोग न हो किसी एजेंसी को या किसी आ सके कि घर में कुछ लोग आए हुए हैं और हम जानते नहीं हैं कि कौन है, मेरे ख्याल में पब्लिक के पार्टिसिपेशन के अलावा, जब मैं होम सेक्रेटरी था तो एक वफ्द आदमी आया था, उनका ये लॉ एनफोर्समेंट ताल्लुक था, तो उन्होंने पूछा कि आपके जो आबादी है नॉर्मली क्राइम कंट्रोल में कितनी मदद करती है, तो मैंने कहा कि जीरो। मैंने कहा ये कैसे, मैंने कहा बाजार में कत्ल हो जाता है, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, किसी को आप पूछते हैं कत्ल किसने किया, कोई भी बताने को तैयार नहीं, कोई भी उसमें इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं। तो वो हैरान हुए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो 85% जो है वो थ्रू पब्लिक हम लाइन एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। तो ये मजबूरी है कि मैं समझता हूँ कि आपने ये भी सवाल पूछा कि फौज कब निकलेगी। आपने देखा कि जून 15 जून 2014 को फौज ने जो है शुमाली वजिस्तान में ऑपरेशन का आगाज किया, जिसके बारे में पहले बताया जाता था कि आप ये ऑपरेशन शुरू करेंगे पे मुल्क में बगावत हो जाएगी, इतने ज्यादा जो है ये हमले होंगे इस किस्म के कि बड़ा कत्लेआम शुरू होगा। लेकिन आपने देखा वो सारे लोग गलत साबित हुए, फौज ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया।
लेकिन उस कामयाब ऑपरेशन के बावजूद ऐसे वाकयात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। फिर यही सवाल उसी ऑपरेशन की कामयाबी के बारे में फिर सवालात जो हैं वो जहन में आते हैं ब्रिगेडियर साहब।
जी बिल्कुल, लेकिन आपने देखा है कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी थी उसमें एक नुमाया कमी आई है। यानी हम इधर पाकिस्तान में टावर में अपने आप को थोड़े से महफूज समझते हैं, और ये हम समझते हैं कि इसमें काफी हद तक नुमाया, जो कि नोट करें मैं मेरे अल्फाज को, उसमें बदली आई है। और लोग कहते हैं कि अभी शायद तजारत और दूसरी चीजों को फरोग में लगा यहाँ KPK में और दूसरी जगहों के ऊपर और पूरे पाकिस्तान में उस लिहाज से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इसको जीरो पे लाया जा सकता। मेरे ख्याल में जब तक कि अफगानिस्तान में हालात इस तरह के होंगे तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए एक आध वाक्या जो है वो हर एक वाक्य को अभी जो है मेरे ख्याल में टेलीस्कोप के नीचे रख के की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कि मैं जैसे मैंने आपको कहा कि पहले शायद हर एक चीज को शुमाली वजिस्तान से जोड़ा जाता था, अभी वो है नहीं। तो आदमी कहता है कि फिर कराची में ऐसे लोग कहीं आबाद तो नहीं है, इतनी ज्यादा आबादी तो नहीं है जिसके अंदर TTP को अगर आप ले लें शायद उनके दहशतगर्द वहां पर मौजूद हो, और कई लोग जो है पाए भी गए उनके ऊपर इंटेलिजेंस की कोई आपने देखा कई बार के इतने लोग पकड़े गए। इस तरह का वाकया कर लेना मैं समझता हूँ कि एक तरीके से लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की कमजोरी समझी जानी चाहिए, और इसके अंदर इंटेलिजेंस भी है कि इंटेलिजेंस आप प्रोवाइड करेंगे तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उस पर काम करेंगी। और हमने सोचा कि शायद कराची के हालात बेहतर हुए हैं, और तभी आपने देखा वजीर आजम साहब की ऐलान और आर्मी चीफ के भी बार बार वहां पर दौरे, और वहां पर जो है DGISI के भी जाना, और वहां पर अभी भी जब वो बैठे हुए मैं समझता हूँ कि अंडर द टेलीस्कोप इसको देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी अगर तहकीकात अच्छी तरह हो जाए तो ये एक तरीका है कराची जैसे शहर में जो कि आपके कबाइली इलाके से बहुत दूर है, इसका एक कोना जो है वो बलूचिस्तान से जरूर मिलता है,
सही।
लेकिन इसको बंद किया जा सकता है। और इस तरीके से मेरे ख्याल में जो सियासी यानी इनको ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है, ताज हैदर साहब ने तो हाथ धो लिए कि हमारा कोई मिलिटेंट विंग नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम है कि लियारी गैंग कौन है और वहाँ पर वो अमन कमेटी क्या चीज देर बलोच का नाम लिया जाता है, ये कौन लोग हैं। तो लोगों को मालूम है कि इस तरह के वो हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इवन जो मजहबी सियासी जमात है उनके भी कुछ ना कुछ जो है इस तरह के हरकत तो आते हैं। एक ही मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून है जिसके ऊपर बारे में कभी नहीं सुना इनका कोई मिलिटेंट विंग है। तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि इन पार्टियों को चाहिए ये जो
इनके बारे में तो माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब ये कहा जाता है कि इनका वोट बैंक पंजाब में जो है वो सारे यही लोग हैं, लश्करी जंगवी के लोग हैं और इन्हीं के
पॉलिटिकल पार्टीज को अपना ये जो पैकेज है इसको दूर कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के साथ इस तरह की चीज जो है,
लेकिन अभी जो वाकया हुआ है ब्रिगेडियर साहब ये तो एक सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो नजर आता है, जिस तरह ताज हैदर साहब हमें बता रहे हैं और जो बात दाऊद आगा साहब ने की है। तो ये
मैं कह रहा हूँ कि लोग तो शायद आपके प्रोग्राम में ये करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो लोग बातें कर रहे हैं वो ही तो ये भी कर रहे हैं कि जी कुछ 2 दिन में हुकूमत ने ऐलान किया कि कुछ पेशरफ किसी चीज के ऊपर होनी है किसी पर, तो लोग तरह तरह
ब्रिगेडियर साहब प्लीज आप खुल के बात कीजिए, किस चीज की पेशरफ होनी थी?
मेरे ख्याल में ब्रिटिश से कोई हजरत आए थे और उनकी कोई मीटिंग हुई थी इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, उन्होंने ऐलान किया था कि 2 दिन में जो है कोई प्रोग्रेस होने वाला है, तो कुछ लोग तो उसको उस तरफ भी ले जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेज के ऊपर ऐसी बात कहना कोई मुनासिब नहीं होगी। ये अगर सेक्टेरियन है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको खुद मैंने आपको कहा है कि उनका मौकफ टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल वाजे है, और उनमें से खासकर पीपल पार्टी जो है वो यहाँ पर सुबह खैबर पख्तूनख्वा में उनको अपनी पॉलिटिक्स नहीं करने दी गई, और इस तरह पंजाब में भी शायद नहीं दी गई, और तभी जो है वो फिलहाल पीछे है, लेकिन ये हमारी एक कौमी पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ कराची में इस किस्म की चीजें हैं, इस किस्म का बैगेज है पार्टियों के पीछे, उसको दूर कर देना चाहिए, ताकि हुकूमत फिर जो है चीजें जो टेररिस्ट है उनके ऊपर हाथ डाल सके, उनके काम में आसानी होगी।
ओके, आप हमारे साथ रहिए ब्रिगेडियर साहब, बेहद शुक्रिया। ताज हैदर साहब, आप अगर जवाब में कुछ कहना चाहें, इससे पहले कि डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब ने भी हमें यहाँ अमरीका से ज्वाइन किया है, उनके पास हम जाएं। जी
देखिए, जहाँ तक अमन कमेटी का ताल्लुक है, वो लहरी के अंदर हमारे सरकर्दा लोगों को कत्ल कर रही है। मलीर के अंदर उन्होंने PMLN का साथ दिया था इलेक्शन में, और 85 पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा करके और वहां पे PMLN को जिताया था। अमन कमेटी का तो ये है। दूसरी चीज, मैं ब्रिगेडियर साहब से इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि अवाम की शिरकत के बगैर कोई भी मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। सवाल ये है कि अवाम जिनके पास इत्तला होती है वो इदारों तक इत्तला क्यों नहीं पहुंचाते? इदारों तक इत्तला सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचाते कि उनके नाम कहीं इन इदारों में मौजूद कुछ लोग जाहिर ना कर दें। सिर्फ इतना सा खौफ है कि उन्हें ये एतमाद नहीं होता कि उनके नाम खुफिया रहेंगे। अब या तो कोई ऐसा इंजीनियरिंग का तरीकेकार निकाल लिया जाए कि जिससे वो बगैर अपना नाम या शनाख्त जाहिर किए बगैर इत्तला दे सकें इदारों को, या ये कि इदारों के अंदर भी ऐसे लोग जो मौजूद हैं जिन पे शको शुबा होता है, उनकी क्लीनिंग की जाए, ताकि अवाम का ये एतमाद बहाल हो कि हम जो भी इत्तला दे रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये कि वो खुद उसका निशाना नहीं बनेंगे। ये बात ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक अवाम की तरफ से इस किस्म की इत्तलात नहीं मिलेंगी उस वक्त तक, क्योंकि ये मामला सिर्फ इंटेलिजेंस का है, अगर हमें पता हो कि जी ये है तो लोग खुद निपट सकते हैं, हमें फौज की या रेंजर की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन ये कि अगर इत्तला नहीं है या इत्तला देने वाला खौफजदा है, तो फिर मेरे ख्याल से ये दुश्वारी रहेगी।
जी बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच।
शुक्रिया
जी, अल्लाह हाफिज।
और मैं के लिए माजरत ख्वाहूं जी,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ रहिए, डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। अभी ब्रिगेडियर साहब ये बात कर रहे थे कि जो मिलिटेंसी इस वक्त हमें नजर आ रही है वो इसका जिम्मेदार जो है एक तरह से अमरीका और खुद पाकिस्तान के जो इदारे हैं, मेरे ख्याल में उनकी इशारा जो था वो पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट की जानिब था कि उन्होंने और अमेरिका ने मिलकर जो ग्रुप्स बनाए हैं उनके बकौल वो आज दहशतगर्दी कर रहे हैं मुल्क में, और वो ग्रुप्स जो हैं अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में रॉ का नाम जो है वो भी आ रहा है, एक इंडियन जो स्पाई एजेंसी है, नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम लिया जा रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं और ख़ासकर आज जो कराची में वाकया हुआ है इसके पीछे इनका हाथ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से डॉक्टर रुहेल
जी? ब्रिगेडियर साहब की बात से किसी हद तक मैं मुतफिक हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उन लोगों ने जो फिरका वारियत को हवा दी और अभी भी किसी हद तक वो दे रहे हैं, और उनको ये जो फिरका वारियत फैलाने वाले और कत्ल करने वाले और इस तरह के जो दहशतगर्द हैं उनका ताकुब जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। उसकी वाजिया मिसाल जो है वो हाफिज सईद और उस तरह के जो ग्रुप हैं उनको नाम बदल के ऑपरेट करने की, उनको रैलियां करने की, उनको जलसे करने की इजाजत दी गई है। ये जो है ये तो पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान के दिफाई इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जाहिर है ये पैदावार हैं, लेकिन इसमें दूसरे ममालिक को मुलव्वज़ करना, कहना कि अमेरिका ये कर रहा है, ये इसमें कोई ना इसकी कोई सेंस बनती है, ना अमेरिका से पाकिस्तान के जो जिस तरह के से ताल्लुकात हैं, जिस तरह से अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा स्टेबल कंट्री हो और पाकिस्तान में लोग जो हैं वो तरक्की करें, वो पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में अमन आए, उसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की दिफाई और पाकिस्तान की इकतसादी और पाकिस्तान का जिस तरह से हाथ पकड़ा है वो ये बात बिल्कुल ही बेतुकी और एक उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है, और ये बात करने वालों को खुद शर्मिंदा होना चाहिए। और अमेरिका से जो पाकिस्तान के जिस तरह के ताल्लुकात हैं उसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका का एक हद तक शुक्रगुजार होना चाहिए। अभी हाल ही में $1 बिलियन की इमदाद जो है पाकिस्तान के दफाई इदारों को खास तौर पे ऐसे वाकयात से निपटने के लिए।
बल्कि आज डॉक्टर रुहेल, आज पाकिस्तान में जो अमरीकी सफीर है रिचर्ड ऑल्सन, उन्होंने इस हमले की जो तहकीकात है उसमें मदद की पेशकश की है, तो ये बताइएगा कि अमरीका इन तहकीकात में किस तरह क्या मदद कर सकता है पाकिस्तान की?
अमेरिका के जो अपने वसाइल हैं उनकी फॉरेंसिक जो नो हो है और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस अफगानिस्तान में है उसमें अगर पाकिस्तान को किसी तरह की मदद चाहिए और पाकिस्तान को कोई इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए जिसकी कड़ी मसलन अफगानिस्तान वगैरह में जाती हो, तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के कहने के बगैर भी पाकिस्तान को प्रोवाइड करने के लिए तैयार होगा ऐसे मसाइल पे, और इससे पहले भी उन्होंने किया है। तो ये जो इस तरह के है बैन अल-अक़वामी जो दहशतगर्दी है एक मुल्क से कड़ी दूसरे मुल्क में मिलती है, तो जाहिर है एक मुल्क की एजेंसी जो है उसकी उसकी वसात या उसकी पहुंच जो होती है वो एक हद तक होती है, उससे आगे जो दूसरी साइड से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए अमरीका पाकिस्तान की पहले भी मदद करता रहा है, और दोनों अमेरिका की एजेंसियां और पाकिस्तान की एजेंसियां इस सिलसिले में बहुत अरसे से जब से पाकिस्तान बना है मैं तो कहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में इस एक्सचेंज की नौइयत जो है वो बहुत बढ़ गई है, तो उस सिलसिले में वो मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टेस्टिंग वगैरह जो होती है जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड फॉरेंसिक टेस्टिंग है वो भी सारी वो कर सकते हैं, सेल फोन द्वारा को का पीछा करना और सेल फोन से इंफॉर्मेशन रिसीव करना, उसके लिए जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की प्रोग्रामिंग चाहिए होती है वो अमेरिका के जाहिर उसमें वसाइल ज्यादा है पाकिस्तान से
जी।
तो वो सेल फोन
इसमें वो मदद कर सकता है जी। बेहद शुक्रिया डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और डॉक्टर मेहदी हसन साहब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आप साबिक सदर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहदी हसन साहब। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, कराची में एक दफा फिर शिया कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि ये वाकियात जिस तरह बार बार रूनुमा हो रहे हैं, अकलियतों को निशाना बनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर इन वाकियात को रोकने से मुतल्लिक ऐसा क्या होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है?
बात ये है भी देखिए कि जो बात करने की है वो कोई नहीं कर रहा, अगर से बोलते बहुत हैं यहाँ लोग, सियासतदान भी बोलते हैं, मिलिट्री के लीडर्स भी बोलते हैं, बार बार कहा जाता है कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, कभी कमर टूटे हुए आदमी भी ऐसा काम करते हैं जो आज हुआ है। बात यह है कि रिलीजियोसिटी जितनी बढ़ गई है उसका कोई जिक्र नहीं करता, सब अपोलोजेटिक हो जाते हैं जब मजहब का सवाल आता है, और ये नहीं समझ में आती बात इनके कि जब माइनॉरिटी निशाना बनती है ज़ुल्म तशद्दुद का और दहशतगर्दी का तो उसका साफ मतलब ये होता है कि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं, और उनका पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खा उनके साथ बैंड का लफ्ज लगता हो, काला दम का लफ्ज लगा दें, लेकिन वो उसी तरह एक्टिव हैं, उनके वसाइल उतने ही हैं, उनको मीडिया पे कवरेज मिलती है, उनको अखबार में कवरेज मिलती है, के बयान आते हैं, बॉल चौकिंग होती हैं, ये तमाम चीजें जो हैं इन पे कोई ध्यान नहीं देता, और रिलीजियोसिटी को कम करने का कोई प्रोग्राम जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वर्बली या प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया कि ये है असल मसला जो है वो हल हो सकता है अगर आप रिलीजियोसिटी को उस अंदाज से कवर कर लें जो इस मुल्क के फाउंडर ने मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में मजहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। लेकिन पिछले 68 इयर्स में जिस तरह मजहब का अमल दखल बढ़ा है वो अगर आप देखें पाकिस्तान में, यहाँ सड़कों के नाम मजहब पे हैं, यहाँ पार्कों के नाम मजहब पे हैं, यहाँ चौराहों के नाम मजहब पे हैं, हर चीज बगैर मजहब के यहाँ अब कुछ नहीं है, और मुकम्मल कंट्रोल है मजहब की एक्सट्रीमिस्ट का इस मुल्क पार्टी पे। और जो हालात कराची के हैं या और शहरों में हैं तो देखते हुए लगता है कि वो जो एक मिसरा है रियाजी का
जी।
इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, तो लगता है आसेब का साया हो गया है। और आपको याद होगा कि जब आजादी मिली थी पाकिस्तान हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान के जो नजूमी थे और जो पंडित थे उन्होंने ये कहा था पंडित नेहरू से कि ये 14 अगस्त का दिन जो है ये मनहूस है, इस पे आप हल्फ ना उठाइएगा। चुनाची उन्होंने 14 अगस्त की रात को 12 बजे लिया था, 12 बज के 1 मिनट पे,
लेकिन उसके बावजूद ये वाकियात जो हैं सामने आ रहे हैं। जी डॉक्टर मेहदी हसन साहब, टाइम बहुत कम है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, वही हमारे आज के राउंड टेबल का टॉपिक था, लेकिन ये पिशावर में जो वाकया हुआ फिर हमें टॉपिक को तब्दील करना पड़ा, लेकिन उस पर मैं जरूर आपके कमेंट लेना चाहूंगी और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे ये खैबर पख्तूनख्वा सूबा जो है वहां के महकमे जो इतलात हैं उनकी जानिब से पिशावर में जो मकामी अखबारात हैं उसमें कुछ इश्तिहारात जो हैं वो छपे हैं गुज़श्ता दिन, और इन इश्तिहारात में खबरदार किया गया है कि घर का अगर कोई फर्द मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हो या घर से गायब हो जाए और अगर वो घर के बाकी अफराद जो हैं वो पुलिस को या हुकाम को इतला ना दें इस बारे में तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और वो कार्रवाई जो है वो फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, और उनकी जायदादें जो हैं वो भी जब्त की जा सकती हैं। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि ये नया इनिशिएटिव पीटीआई ने लिया है केपीके में, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, दहशतगर्दी को रोकने में कोई मदद मिलेगी?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में दो चीजें बैक वक्त हो रही हैं। एक तो ये है कि इलाके की जो है वो मैपिंग हो रही है, ये है कि हर घर में जो है कौन रह रहा है और क्यों रह रहा है, आपका अपना घर है या कोई और वो जो है बाकायदा पुलिस स्टेशन में ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, और हर एक कमिश्नर जो है, जो पिशावर का कमिश्नर है, मजान का कमिश्नर है, कुहाट का कमिश्नर है, वो ये डेटा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। वो मुझे खुद मालूम है कि मेरे घर में भी फॉर्म आया और हमने फिल करके दिया, तो ये उसके लिए कि जो लोग आते हैं और किसी घर किराए पे लेते हैं और फिर जो है जो मैंने आप कहा कि वो रेकी करते हैं टारगेट की और फिर जो है वो टेररिज्म की कार्रवाई होती है, तो उसमें एक पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरी है।
ठीक है,
आपने देखा जो पिशावर स्कूल पे जो हमला हुआ, इसके अंदर जो दो लीडिंग लोग थे वो यहीं के रहने वाले थे, पिशावर के एयरगेट जो है, और उनको बाकायदा उनके शिनाख्ती कार्ड जो है वो था और उससे पता चला कि वो कौन लोग हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ फैमिलीज के कोई बच्चे भागे हुए हैं, उनने टेररिस्ट को ज्वाइन किया हुआ है और वो घर से गायब हैं, तो
तो ये मेरे ख्याल में एडिशनल एक्ट है कि अगर आपका कोई बेटा इसी तरह भागा हुआ है तो आप अभी से
हुकाम को इतला करें। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, क्या जो पाकिस्तान का आईन है और उसके अंदर इंसानी हुकूक का जो चार्टर है उसके मुताबिक ये आपको नजर आता है ये नया इनिशिएटिव पीटीआई की जानिब से?
देखिए बात ये है कि इसको नाम दिया गया है आजकल क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री की मुहिम भी जारी है और सियासतदान भी बयान देते रहते हैं, कम से कम बयान तो देते हैं। चलिए वो इसको उन्होंने इनके सपोर्टर्स का नाम दिया है कि जो लोग सपोर्ट किसी न किसी अंदाज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल समझे जाएंगे दहशतगर्दी।
यानी खामोश रहना जो है उसका भी ये मतलब लिया जाएगा कि ये दहशतगर्दी
को खामोश रहने का नहीं है लेकिन,
लेकिन इस इश्तिहार को अगर आप पढ़ें डॉक्टर मेहदी हसन साहब इसमें ये है कि अगर घर वाले जो हैं वो खामोश रहें और वो इतला ना दें पुलिस को, वो इतला ना करें कि उनके फैमिली का कोई फर्द जो है वो गायब हुआ है।
हाँ बात ये है खामोश रहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इत्तला है ऐसी जो अहम हो सकती है पुलिस के लिए या इंटेलिजेंस वालों के लिए और वो ना दें आप, तो ये खामोशी मेरी इंटरप्रिटेशन इस खामोशी से ये है
जी। लेकिन पाकिस्तानी आईन के मुताबिक जहां तक मुझे याद है उसके मुताबिक तो हर फर्द जो है वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, तो यहाँ आप किस तरह एक बाप की वजह से बाप को बेटे को आप किस तरह पकड़ेंगे या माँ की वजह से बेटी को?
तो ये बड़ा पुराना तरीका है पाकिस्तान का, यहाँ सिविल हुकूमतों के दौरान भी और दहशतगर्दी जब नहीं थी जब भी ये होता रहा है पॉलिटिकल केसेस में भी कि अगर बेटा अवेलेबल नहीं है तो बाप को पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी, अगर बाप अवेलेबल नहीं है तो बेटा जो है वो व्यावलक के दौर में तो खातीन भी बीवियां भी लोगों की गिरफ्तार हुई और किले तक पहुंची जो टॉर्चर सेल किले का था उसमें। तो ये पाकिस्तान की रिवायत बड़ी पुरानी है और क्योंकि ह्यूमन राइट्स का स्टैंडर्ड वो नहीं है पाकिस्तान में जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है, इसलिए ऐसी बातें जो हैं यहाँ होती रहती हैं और लोग कम ही तवज्जो करते हैं।
ओके ब्रिगेडियर साहब, हमने देखते हैं कि घर के बाज अफराद को घरों से उठा लिया जाता है, घर वालों को पता भी होता है कि इनको किसने उठाया है, लेकिन अगर वो पुलिस को इतला करते हैं तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। बलूचिस्तान की मैं बात करना चाह रही हूँ इस वक्त, तो क्या उस सूरत में फिर क्या होगा, किस तरह इन चीज़ों पर अगर इस तरह, क्योंकि इस तरह के वाकयात जो हैं बलूचिस्तान के अलावा अब सूरत में भी हमें काफ़ी नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये अप्लाई होगा ये सब कुछ?
मेरे ख्याल में अगर आप खासकर इंटेलिजेंस वालों की बात करते हैं तो उनके पास ये पावर बिल्कुल नहीं है, और अगर वो किसी को अरेस्ट करते हैं अपने लेते हैं कस्टडी तो पुलिस को और उन्हें इतला करनी होती है कि आदमी हमारे पास है। मेरे ख्याल में अभी इस के ऊपर जितनी मिसिंग पर्सन के ऊपर जितनी भी हो रही है मुकदमात वगैरह जो चल रहे हैं मेरे ख्याल में अभी ये नहीं हो रहा है, और ये पुरानी बातें हैं और कुछ ऐसे भी इसके अंदर हैं कि एक आदमी की खासकर बलूचिस्तान में एक मुहिम जारी है जिसको कोई गैर मालिक में लोग बैठे हुए जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के आदमी गायब है और शायद वो आदमी जो है वो किसी गल्फ स्टेट में नौकरी कर रहा होगा। मेरे ख्याल में अभी इंटेलिजेंस वालों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि वो ऐसी कोई कार्रवाई ना करे और किसी को अगर उन्हें उठाना हो कस्टडी में लेना हो तो पुलिस को इतला कर दे, और उसका एक तरीका है। और अगर पुराने वक्तों में ऐसा कोई हुआ है तो उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट जो है वो सुलझा रही हैं उन चीजों को, तो मेरे ख्याल में अभी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहले बात की, हमारा थोड़ा सा वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये जो आदमी फैमिली कहते हैं कि आप इतला कर दें इसका मतलब ये है कि आप कह दें कि उनके साथ हमारा कोई गरज नहीं है और वो हमारे घर आता जाता नहीं है, क्योंकि इसी तरह वो अपना घर इस्तेमाल करके अपने दो और साथियों को लाकर वहां पर रहता है
और फिर वो कोई कार्रवाई करता है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज है, ये जो चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की है।
ओके, और फिर ये भी बात की जाती है डॉक्टर मेहदी हसन साहब के गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदामात जो हैं वो उठाने पड़ते हैं, और बिल्कुल पख्तूनख्वा में अगर हम देखें तो वाकई वहाँ हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है, काफी अनसर्टेनिटी है अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी मेरा आपसे ये सवाल है कि इंसानी हुकूक के नुक्ते नजर से क्या ये दुरुस्त है?
आप दुरुस्त कह रही हैं, ये दुरुस्त नहीं है, और कोई भी हालात कैसे भी हों, आइन से मारवा कोई एक्शन जो है उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। आइन के मातहत हर चीज होती है, या तो आप आइन मुअत्तल करें ये कह के कि जी हालात ऐसे हैं कि हम आइन की फुला फुला क्लॉज जो है उसको मुअत्तल कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा एक्शन नहीं हुआ तो हर एक्शन जो है वो आईन के तहत एक्शन लेने वाले जवाबदेह हैं, और कानून ये है हमारे आईन के मुताबिक कि जिसको गिरफ्तार किया जाए उसे 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करके ये बताया जाए कि इस पे क्या इल्जाम है। तो अगर ये नहीं होगा तो वो मिसिंग पर्सन शुमार हो
जी। तो ये जो हुक्मनामा आया है फिर इसकी कानूनी हैसियत आप कुछ देखते हैं पाकिस्तान के अंदर?
मेरा ख्याल ये है कि अगर इसको चैलेंज कर लें लोग
जी,
तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर अपना फैसला दे सकती है
जी,
और फैसला कर देंगे कि ये आईन के मुताबिक है या है
ओके, यानी इनको चैलेंज किया जा सकता है अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ब्रिगेडियर साहब, आम लोगों की तरफ से इन इश्तिहारात से मुतल्लिक कोई रद्दअमल सामने आया है? लोग किस तरह इस नए इनिशिएटिव को देख रहे हैं?
मेरे ख्याल में इसको अच्छा देख रहे हैं, बल्कि कई लोग जो है कभी कभी मुझे हैरानी होती है वो मेरे पास सिफारिश के लिए आ जाते हैं, और आजकल भी एक सिफारिश आई हुई है कि हमारा बेटा इस तरह नहीं था और ये हो गया वो हो गया, उसका जी कोई पता कर ले, सिटी एजेंसी ने पकड़ा हुआ है। मैंने कहा वो दहशतगर्द था, तो हंस की कहते कि हाँ था, तो मैंने कहा आपको डिक्लेयर करना था वरना आप इसमें फंस जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक, और ये मेहदी हसन साहब ने बात की, इंटेलिजेंस वालों को ये इस्तिस्ना हासिल है कि वो उसको 48 घंटे या 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ना करें। वो खास एक दफा है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम इसको ले रहे हैं, मगर वो जो है मेरे ख्याल में उसका अरसा जो है 10 दिन से ज्यादा नहीं होता, और 10 दिन में उनको रुजू करना पड़ता है, क्योंकि वो 10 दिन के अंदर उन्होंने किसी शख्स से पकड़ा है
जी। तो ब्रिगेडियर साहब, लेकिन फिर इससे ये भी
स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं पुलिस स्टेशन को,
ओके,
ये आदमी हमारे अंडर कस्टडी है।
ठीक, ये बहुत ही मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आइंदा इस पे मजीद हम बात करेंगे तफसील में, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर मेहदी हसन साहब और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, बेहद शुक्रिया आपका। इसके अलावा डॉक्टर ताहिर रुहेल हमारे साथ थे, दाऊद आगा साहब और ताज हैदर साहब, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से शहनाज नफीस और नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।